بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری ہوشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں۔ क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। तो दोस्तों, आज बुधवार है, शनिवार शहरीवर की 7 और अगस्त की 29 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के दूसरे महीने सफर की पहली तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसकी बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम विश दर्पण और अंत में आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम सेहत का राज। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और उसके बाद आप जो है वो खबर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबर सुनेंगे। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी और मरियम मेहरदादी से सुनेंगे।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने पवित्र नगर मस्जिद पहुंचकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर दी हाजिरी। परमाणु वार्ता विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ईरान देगा अमरीका को अपना जवाब। इराक में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, मुक्तदा सदर ने राजनीति से लिया संन्यास। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बलूचिस्तानों का किया समर्थन, गुजरात सरकार की आलोचना की। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने पवित्र शहर मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत की और पवित्र ज़री की सफाई के रूहानी कार्यक्रम, जिसे गुबार रूबी कहते हैं, उसमें हिस्सा लिया। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति में होते सुधार के मद्देनज़र ईरान के सबसे पवित्र नगर मशहद की आध्यात्मिक यात्रा की। उन्होंने मशहद में स्थित पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पौत्र हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिरी दी। इस दौरान वहां आयोजित हुए पवित्र ज़री की सफाई के कार्यक्रम में भाग लिया।
ईरान का कहना है कि ईरानी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए ईरानी विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान ऐसी वार्ता के बारे में गंभीर है जिसका नतीजा एक स्थायी और समग्र समझौते के रूप में सामने आए और जो देश के हितों की रक्षक हो। नासिर कनानी ने कहा कि वार्ता के विषय की संवेदनशीलता की वजह से वार्ता प्रक्रिया को गुप्त रखा जा रहा है और उसे मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा रहा है और सारे पक्ष इस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए होने वाली वार्ताओं के बारे में ताज़ा प्रगति के हवाले से कहा कि अब तक वार्ता में प्रगति हुई है और जैसा कि बारंबार हुआ है क्योंकि बाकी बचे मुद्दे ज़्यादा नहीं हैं। दोनों पक्षों के बीच परमाणु समझौते से संबंधित बहुत से मामले हल हो चुके हैं और केवल कुछ ही मुद्दों का समाधान बाकी है जो संवेदनशील, महत्वपूर्ण और निर्णायक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान एक समझौते तक पहुंचने के मामले में गंभीर है और इस बात पर विश्वास रखता है कि परमाणु समझौते पर दोबारा अमल करना देश और अन्य पक्षों के हितों से समन्वित है।
ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि नवीनतम दौर की वार्ता का लक्ष्य प्रतिबंधों को स्थायी रूप से समाप्त करना है। ईरान के लुरिस्तान प्रांत की राजधानी खुर्रमाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान के खिलाफ हर दिन लगाए जाने वाले झूठे आरोपों के सिलसिले को समाप्त करना और दुश्मन द्वारा बनाए जाने वाले बहाने पर लगाम लगाना परमाणु वार्ता की ताज़ा बातचीत का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है कि प्रतिबंध स्थायी रूप से हटाए जाएं ताकि ईरानी राष्ट्र अपने अधिकारों के आर्थिक लाभ का फायदा उठा सके। गौरतलब है कि ईरानी राष्ट्र के खिलाफ गैरकानूनी अमरीकी प्रतिबंधों को समाप्त करने के उद्देश्य से वियना में वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ था जो 8 अगस्त को समाप्त हो गया।
गजा पट्टी में एक 6 वर्षीय बच्चा केवल इसलिए मौत की नींद सो गया क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज इसराइल ने नहीं होने दिया। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन का 6 वर्षीय बच्चा फारूक अबू नाजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फारूक एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहा था। उसे बेहतर से बेहतर इलाज की जरूरत थी और अच्छे इलाज के लिए उसे गाजा पट्टी से बाहर जाना जरूरी था, लेकिन आतंकी इसराइली सेना की घेराबंदी के कारण उसके माँ बाप उसका इलाज कराने उसे बाहर नहीं ले जा सके और आखिरकार रविवार को 6 साल के मासूम फिलिस्तीनी बच्चे फारूक अबू नाजा की बिना इलाज के मौत हो गई। गाजा पट्टी के मानवाधिकार संगठन अलमिजान ने एक बयान जारी करके कहा कि फारूक अबू नाजा को इलाज के लिए गाजा से बाहर ले जाना बहुत जरूरी था। नाजा के पिता ने बहुत हाथ पैर मारे ताकि अपने बेटे का इलाज बाहर कर सके, लेकिन आतंकी इसराइली सैनिकों ने उन्हें गाजा से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। मानवाधिकार संगठन अली मिजान का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फारूक अबू नाजा की मौत का जिम्मेदार केवल और केवल अवैध ज़ायनी शासन है।
मुक्तदा सदर के ऐलान ने एक बार फिर इराक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इराक में जारी राजनीतिक संकट के बीच सोमवार को सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा सदर ने ऐलान किया कि वो हमेशा के लिए राजनीति से खुद को अलग कर रहे हैं। मुक्तदा सदर के ऐलान के सामने आते ही इराक की राजनीति में तूफान सा आ गया। वहीं मुक्तदा सदर के समर्थकों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। वैसे सोमवार का दिन इराक के लिए कुछ अलग था क्योंकि मुक्तदा सदर के ऐलान से पहले इराक के वरिष्ठ धर्म गुरु आयतुल्ला काजिम हायरी ने एक बयान जारी करके कहा कि वो मर्जे तकलीद की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऐलान में कहा कि क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो खुद को इस जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपील की कि वे अब उनके स्थान पर ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई की तकलीद करें। इस बीच आयतुल्ला काजिम हायरी ने खुद को मर्जे तकलीद से अलग करते हुए जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने इराक के ताज़ा राजनीतिक संकट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आयतुल्ला हायरी ने किसी का नाम लिए बिना ऐसे लोगों की आलोचना की जो इराक की राजनीति में लोगों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आयतुल्ला हायरी के इस बयान से आहत होकर सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा सदर ने खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग करने का ऐलान कर दिया।
ایران کے بارے میں بیان دینے پر اسرائیل کے کھنکھار خفیہ ایجنسی موساد کے پرمکھ کو پھٹکار ملی ہے۔ ہبرو بھاشا نے رپورٹ دی ہے کہ موساد کی جاسوس ایجنسی کے پرمکھ کو ایران کے بارے میں بیان اور پرمانو مدے میں امریکی سرکار کے کریا کلاپ کی کڑی آلوچنا کے بعد تیل اویو کے منتری منڈل کے پردھان منتری نے ان کو پھٹکار لگائی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار ہبرو بھاشا کے میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے انترم پردھان منتری یائیر لاپید نے موساد کے پرمکھ ڈیوڈ بارنیا کے ساتھ بات چیت کی اور ایران کے بارے میں حالیہ بیان دینے کی وجہ سے ان کو پھٹکار لگایا، کیونکہ لاپید کے انوسار انہوں نے ایران کے بارے میں تیل اویو کے نردیشوں کا الگھن کیا ہے۔ I24 نیوز سائٹ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ اسپشٹ تھا کہ برنیا نے نئی مانگوں سے آگے بڑھ کر ایران کے پرمانو مدے کے بارے میں نیتیاں بنائیں اور اپنے بیانوں میں انہوں نے امریکہ کے ورودھ کڑا حملہ کیا۔ لاپید کے ورودھ کے بعد موساد نے بارنیا کے ورودھ آروپوں کو کم کرنے کا پریاس کیا۔ وائٹ نیٹ ویب سائٹ نے بھی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ تیل اویو کے منتری منڈل کے پردھان منتری نے بارنیا سے کہا ہے کہ وہ ساری اسرائیلی پارٹیوں اور ادھیکاریوں کی طرح جو پرمانو مدے کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں تیل اویو کی سرکاری گائیڈ لائن اور سارجنک نیتوں کا انوسرن کرے۔ ہبرو میڈیا نے بتایا کہ موساد پرمکھ بارنیا نے ان ملاقاتوں میں جو بیان دیے وہ لاپید کے نردیشوں کے وپریت تھے۔
عراق کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ نے کہا ہے کہ ترکیے کے سینکوں کو اس دیش سے نکالنے کی شکتی اور شمتا رکھتے ہیں، کنتو بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی اپنے اڈے خالی کر کے دیش سے نکل جائیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار حزب اللہ آندولن کے سرکشا وبھاگ کے پرمکھ ابو علی عسکری نے عراق سے ترکیے کے سینکوں کے نشکاسن پر بل دیا اور کہا کہ اگر دشمنوں نے عراق پر بمباری کی تو وہ خود اپنے جال میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ترکیے کو اپنے اڈے خالی کرنے ہوں گے، اس کے بعد سیماورتی کھیتروں سے کلین اپ آپریشن کا کرم شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکیے کے سینکوں کو عراق سے نکالنے کی شکتی اور شمتا رکھتے ہیں۔
عراقی سینا نے آتنکوادی گٹ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کے امبار پرانت میں وایو سینا کی کارروائی کے دوران داعش کے خفیہ ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے انوسار عراق کے سوئم سوی بل حشد الشعبی کے نینوا آپریشنل سینٹر کی رپورٹ کے انوسار آتنکی گٹ داعش موصل میں آتنکی کارروائی کی یوجنا بنا رہا تھا کہ اس کے ورودھ بڑی گپت کارروائی کی گئی، جس کے دوران داعش کے 4 سرگنا مارے گئے اور کئی انیہ گھائل ہو گئے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور ہماچل پردیش کے پورو مکھ منتری شانتا کمار نے بلقیس بانو ساموہک بلاتکار اور ان کے پریوار کے ساتھ لوگوں کی ہتیا کے معاملے میں 11 دوشیوں کی سمے پورو رہائی کو لے کر گجرات سرکار کی آلوچنا کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس سمبندھ میں پردھان منتری نریندر مودی سے ہستکشیپ کرنے کے لیے بات کریں گے۔ باجپئی سرکار میں کیندری منتری رہے 80 ورشیے بھاجپا نیتا شانتا کمار نے کہا کہ گجرات سرکار کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور معاملے میں دوشی ٹھہرائے گئے لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دوشیوں کی رہائی کے بارے میں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا، یہ اتہاس کے سب سے بربر معاملوں میں سے ایک تھا، کوئی سرکار دوشیوں کو اتنی چھوٹ کیسے دے سکتی ہے۔ کمار نے آزادی کی 75ویں ورشگانٹھ پر دوشیوں کی رہائی ہونے کو بھی شرمناک قرار دیا۔
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، کاریکرم راجنیتک چرچا لے کر میں سید میسم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں۔ یمن اور سیریا کے سنسادھنوں کی لوٹ مار کا جائزہ لے رہے ہیں اختر عباس.
سیریا کے تیل سنسادھنوں کو امریکہ اور اس سے سمبندھت ملیشیا دوارا چرایا جا رہا ہے, جبکہ یمن میں پشچمی عرب پکش دوارا دیش کے ارجا سنسادھنوں کی چوری نے ادھک گمبھیر اور سارجنک روپ دھارن کر لیا ہے. یمن پشچمی ایشیائی کھیتر کا سب سے غریب عرب دیش ہے, جو پچھلے دشک میں آنترک سنگھرشوں اور اس دیش کے خلاف سعودی عرب دوارا تھوپے گئے یدھ کے کارن اور بھی غریب ہو گیا ہے. یدھ کے پریڑام سوروپ اس دیش کا بنیادی ڈھانچہ نشٹ ہو گیا ہے اور اس نے یمن کی آرتھک سمسیاؤں کو اور بھی بڑھا دیا ہے. یمن ان دیشوں میں سے ایک ہے جن کے پاس ارجا آئے ہے, حالانکہ یہ سیمت ہے. یمن کے ارجا سنسادن دکشنی پرانتوں جیسے شبوا اور حضرموت اور اتری پرانتوں جیسے مارب الجوف اور اس جیسے کن انیہ پرانتوں میں موجود ہیں. حالانکہ پوروی اور دکشنی پرانتوں میں ارجا سنسادنوں کو پشچمی اور عرب پکش ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں. یمن کی نیشنل سالویشن سرکار کے میڈیا اور کلچرل ڈپٹی زید احمد الغرسی نے حال ہی میں کہا تھا کہ 2016 سے 2022 تک آکرمن کی شروعات کے بعد سے حملہوروں نے لگ بھگ 79 ملین بیرل یمن تیل لوٹا ہے, جس کی قیمت 13 ارب 25 ملین ڈالر سے ادھک ہے. حال ہی میں یمن کے شبوہ پرانت کے تیل اور گیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. شبوہ پرانت کے سنسادنوں میں یو اے ای اور فرانس کی مضبوط اپستھتی ہے اور وہ کھلے عام ان سنسادنوں کی چوری کر رہے ہیں. پچھلے مہینے ایک اماراتی ٹینکر نے شبوہ پرانت کے رزوم بندرگاہ سے 4,36,40,000 ڈالر سے ادھک مولے کے 4,00,000 بیرل کچا تیل چوری کیا. اس سے پہلے یمن کے حضرموت پرانت کی الشجر بندرگاہ سے 2 ملین بیرل سے ادھک کچے تیل کی لوٹ پاٹ کی گئی, جس کی قیمت لگ بھگ 27 کروڑ ڈالر سے ادھک تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری سنیوجت طریقے سے کی جاتی ہے, جو کسی بھی صورت میں سویکاریہ نہیں ہے. یمن کے اس ادھیکاری نے انتراشٹری سمودائے اور انتراشٹری سنگٹھنوں سے کہا ہے کہ وہ یمنی لوگوں کی سمپتی کی وشواسگھاتی سرکار دوارا لوٹ پاٹ کو سماپت کرنے کے لیے ہستکشیپ کریں. یہ اس سمجھوتے میں ورنت ہے جسے حملہور سعودی اماراتی گٹھ بندھن کے وشواس پاتر اور سوگھوشت پردھان منتری معین عبد الملک نے کیا تھا. یہ سمجھوتا لگ بھگ جون کے انت میں ہوا تھا, جو اس چوری کا آدھیکارک اوچت بن گیا, کیونکہ اس سمجھوتے کے پراودھانوں کے انوسار یمن کے ایندھن کھیتر کو سعودی عرب کو سونپ دیا گیا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کارکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کارکرم راجنیتک چرچا.
امریکہ اور جاپان کے بیچ ہونے والے سنیکت سینیہ ابھیاس کا جائزہ لے رہے ہیں محمد مہدی.
امریکہ اور جاپان کے مدھیہ سینیہ ابھیاس ہو رہا ہے. اس سنیکت سینیہ ابھیاس کا آیوجن دوی پکشیے سینیہ سمبندھوں کے مضبوط ہونے کا سوچک ہے, وشیش کر اس لیے کہ اس سینیہ ابھیاس میں آدھونکتم ہتھیاروں کا پریوگ کیا جا رہا ہے. اس سینیہ ابھیاس میں 2,000 سے ادھک امریکی اور جاپانی سینک بھاگ لے رہے ہیں اور یہ جاپان کے کوماموتو دیپ میں ہو رہا ہے. جاپانی سمویدھان کے انوسار اس دیش کے پاس سینا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی جاپان سینک شکت میں بدل سکتا ہے. جاپان کے پورو پردھان منتری آبے شنزو نے سمویدھان کے اس قانون میں سنشودھن کا پریاس کیا, پرنتو ان کے پریاسوں کا کوئی پریڑام نہیں نکلا. پرنتو حالیہ ورشوں میں امریکہ نے جاپان کو اکسایا ہے تاکہ ایک بار پھر وہ سینک شکتی بن جائے. اس کے لیے جاپان یہ اوچت درشاتا ہے کہ وہ چین اور اتری کوریا کی اور سے اتپن کی جا رہی چنوتیوں سے مقابلے کے لیے ایسا کر رہا ہے. یہ ایسی استھتی میں ہے جب جاپان کے لوگ یتھاوت سینکرن کے ورودھی ہیں. राजनीति के विश्लेषकों का इस बारे में मानना है कि जापान के लोग इस देश के संविधान में संशोधन के इच्छुक नहीं है, क्योंकि वे दोबारा जापान में साम्राज्यवाद की लौट आने से चिंतित हैं। अमेरिका और जापान के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, कुछ पहलुओं से वो समीक्षा योग्य है। इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका का एक लक्ष्य यह है कि वो जापान को उकसाना चाहता है, ताकि ये देश चीन और उत्तरी कोरिया से मुकाबले के बहाने खुद को हथियारों से लैस करे। दूसरे शब्दों में ये कि जापान भी अमेरिकी हथियारों का खरीदार बन जाए, ताकि अमेरिका में हथियारों का निर्माण करने वाली कंपनियों की जेब भर सके और उनका कारोबार फल फूल सके। अमेरिका और जापान के मध्य जो संयुक्त अभ्यास हो रहा है, उसका दूसरा लक्ष्य है कि अमेरिका जापान को सैनिक दृष्टि से मजबूत करके चीन और उत्तर कोरिया से दुश्मनी को हवा देना चाहता है। दूसरे शब्दों में अमेरिका सैनिक दृष्टि से जापान को मजबूत करके वहां अपनी सैनिक उपस्थिति को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाना चाहता है। अमेरिका जापान को जो सैनिक दृष्टि से मजबूत कर रहा है और उसके साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो उसका ये कार्य क्षेत्र में सैनिक होड़ आरंभ होने का कारण बनेगा। जानकार हलकों का मानना है कि अमेरिका कभी दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास करता है और अब जापान के साथ कर रहा है, तो उसका ये कार्य इस बात का सूचक है कि वो सैनिक दृष्टि से चीन को घेर रहा है। राजनीतिक मामलों के एक विशेषज्ञ यांग यू जोन इस बारे में कहते हैं कि चीन जापान के सैन्यीकरण से चिंतित है और इस बारे में उसने बार-बार चेतावनी भी दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका ने चीन को घेरने की तैयारी आरंभ कर दी है और जापान के साथ उसने जो सैन्य अभ्यास आरंभ कर रखा है, उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का। भ्रष्टाचार, महंगाई और राज्य सरकारों को गिराने जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। ब्यौरा दे रहे हैं नई दिल्ली से शमशाद काजमी।
दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दों को लेकर आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कई दूसरे राज्यों की तरह सरकार गिराने के लिए दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू किया था, जिसे नाकाम बना दिया गया है।
मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है। जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फेस हो गया।
यही बात बताने के लिए आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विश्वास मत के लिए प्रस्ताव पेश किया। भाजपा विधायकों ने विश्वास मत प्रस्ताव शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे को देखते हुए पहले डिप्टी स्पीकर ने भाजपा विधायकों को बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वे विधायक विरोध दर्ज कराते हुए वेल तक पहुंच गए तो मार्शल द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया गया। भाजपा विधायक दूसरे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत पेश करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा की सरकारें गिराने के लिए 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए और यही ऑपरेशन दिल्ली में भी किया जाना था, लेकिन हमारे विधायकों ने इसे असफल बना दिया। केजरीवाल ने कहा कि हमने यही सिद्ध करने के लिए विश्वास मत प्राप्त करने का फैसला किया। विधानसभा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के उप राज्यपाल विनय सक्सेना के त्यागपत्र की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब केजरीवाल कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करेंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि महंगा डीजल और पेट्रोल बेचकर भाजपा कमल ऑपरेशन चला रही है और जनता का पैसा सरकार बदलने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसी बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आबकारी के बाद शिक्षा घोटाले का भी आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि स्कूल बनाने के नाम पर घोटाला किया गया है।
जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है।
उधर केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, आप अभी हमारा कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा सैयद मीसम से सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण।
श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईरान पर लगे गैर कानूनी प्रतिबंधों को हटवाने के लिए होने वाली वार्ता। इस्लामी गणतंत्र ईरान और अमेरिका के बीच यूरोप की मध्यस्थता से होने वाली वार्ता इस चरण में पहुंची है कि यूरोप की ओर से दिए गए मसौदे पर ईरान अपना जवाब दे चुका है, जबकि अमेरिका ने भी अपना जवाब दे दिया है। अमेरिका की ओर से दिया गया जवाब ईरान को मिल गया और ईरान ने उसका अध्ययन किया। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के राजदूत मिखाइल ओलियानोव कई हफ्ते से इस बारे में बड़े उत्साहजनक बयान दे रहे हैं। उनका बार बार ये कहना है कि समझौता बिल्कुल करीब है। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि प्रगति काफी हो चुकी है और आने वाली 1 सितंबर की तारीख को समझौता हो सकता है, मगर ईरान और अमेरिका के अधिकारी वार्ता में बुनियादी प्रगति की तो बात मानते हैं, लेकिन किसी हद तक सावधानी बरतते हुए बयान दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी का कहना है कि अब तक अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन जब तक सारे मुद्दों पर सारी सहमति न हो जाए उस समय तक नहीं कहा जा सकता कि समझौता हो गया है।
मैं बतौर कुल्ली میتونم بگم که ما تا تا اینجای کار پیشرفت‌های نسبتاً خوبی داشتیم تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم।
یہ بات تو امریکی بھی کہہ رہے ہیں کہ وارتا میں کافی بنیادی قسم کی پرگتی ہوئی ہے، مگر ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے شرارتیں بھی جاری ہیں۔ دراصل امریکی کبھی بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے۔ امریکی ودیش منترالے کے پروکتا نیٹ پرائس نے ایک بات یہ کہہ دی کہ ایران اپنے سپاہ پاسداران انقلاب فورس کو امریکہ کی آتنکی سنگٹنوں کی لسٹ سے باہر نکلوانے کی مانگ کر رہا ہے اور امریکہ اس مانگ کو سویکار نہیں کرے گا۔
President has been clear, he's been firm, he's been consistent that he will not lift the terrorism designation on the IRGC. Iran's demand that we do so has been removed from the latest version of the text that we have seen. And that's part of the reason why a deal is closer now than it was 2 weeks ago.
मगर ईरान की परमाणु वार्ताकार टीम के सलाहकार मोहम्मद मरंदी ने एक कार्यक्रम में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि ईरान ने यह मांग रखी ही नहीं थी कि अमेरिका उसे खारिज या स्वीकार करता। उन्होंने कहा कि यह विषय परमाणु वार्ता के भीतर शामिल नहीं किया गया था।
Well, first of all, I have to point out that Iran did not withdraw any demand. And I think the Americans are trying to sell this at home. I've been saying this for months, that removing the guards from the U.S. Terrorist list is not something, was not a precondition. And I've said this often, people can check my interviews. I probably said it on Al Jazeera multiple times. So the statements coming from Washington don't make any sense.
यूरोपीय संघ परमाणु वार्ता के दौरान काफी सक्रिय रहा और उसने कोशिश की कि परमाणु समझौता नतीजे तक पहुंच जाए। यूरोपीय संघ के विदेश नीति चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि उनके प्रस्ताव पर ईरान का जवाब बिल्कुल तार्किक है।
Hubo una propuesta mía como coordinador de las negociaciones.
बात यह है कि परमाणु समझौते के मामले में अमेरिका की पोजीशन काफी कमजोर है। अमेरिका ने 2015 में ओबामा शासनकाल में यह समझौता किया, मगर 2018 में ट्रंप अपने शासनकाल में इस समझौते से बाहर निकल गए। उन्होंने इस समझौते का भी उल्लंघन किया और समझौते को अनुमोदित करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का भी उल्लंघन किया। पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार प्रोफेसर किंदिल अब्बास का कहना है कि इस समय अमेरिका के पास कोई चारा ही नहीं है। ट्रंप का शासनकाल अलग तरह का था। आज बाइडेन के शासनकाल में दुनिया का मीडिया यही समझता है कि परमाणु समझौते में लौटने के अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है और यूरोप को भी इस समझौते की बहुत जरूरत है।
मेरे ख्याल में जो दुनिया के मौजूदा हालात चल रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों की जो सूरत हाल है, खासतौर पर यूक्रेन वार के बाद, अमेरिका के पास कोई और चॉइस रह नहीं गई कि वो इस माहदे पर उसी अंदाज में अमल दरामद करे जिस अंदाज में इस पर दस्तखत हुए थे। और चूंकि यूनिलेटरल विड्रॉल किया था अमेरिका ने और उस करारदाद का यूनिलेटरल विड्रॉल हुआ है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल की 2231 एक रेजोल्यूशन से गारंटी किया गया था, तो दुनिया देख रही है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है, एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है। तो इस बेस पे मैं समझता हूँ कि ट्रंप के पीरियड में तो दुनिया को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मिले, ना उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से ना एक्सटर्नल पॉलिटिक्स से, लेकिन अब दुनिया को ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ईरान का एक लॉजिकल व्यू है कि जब ईरान को, ईरान ने हर सतह से ये कहा कि इनका प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है और उनका मिलिट्री ग्रेड की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं, और इसके लिए इवन एक रिलीजियस वर्डिक्ट जिसको फतवा हम कहते हैं वो मौजूद, इसके बावजूद आप आईएए के जितने भी इंस्पेक्शंस हुई यहाँ पे, जितने उन्होंने अपने कैमराज लगाए हुए हैं, कभी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई कि ईरान मूव कर रहा है कोई मिलिट्री ग्रेड प्रोग्राम की तरफ। तो जब ईरान की, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपके जो मुबसर हैं यहाँ पे, या आपकी जितनी असेसमेंट है उसमें भी साबित नहीं हो रहा, ईरान का क्लेम भी नहीं है, तो फिर आप ईरान को अगर मुख्तलिफ सेंक्शंस का इसके ऊपर इम्पोज करते हैं, तो मैं इसलिए ये समझता हूँ कि दुनिया के जितना मीडिया है, दुनिया के जितने अच्छे चैनल्स हैं, उनमें यही एक तासुर पाया जाता है कि अब अमेरिका के पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
सूरतेहाल यह है कि अमेरिका के रवैये के चलते अमेरिकी नीतियों की गंभीरता पर सवालिया निशान लग गए हैं। ये बात सबकी समझ में आ रही है कि अमेरिका खुद को ताकतवर समझकर अन्य देशों को दबाने और अपनी बातें मानने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। लंदन स्थित वरिष्ठ टीकाकार मुश्ताक लाशारी ये कहते हैं कि आज पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट और दूसरे कई संकटों से जूझ रही है, तो इस तरह के हालात में अमेरिका हमेशा आग में घी डालने का काम करता है। अमेरिका नहीं चाहता कि संकट खत्म हो, जबकि यूरोप बहुत नुकसान उठा चुका है और हालात में सुधार का इच्छुक है। ईरान का अंदाज हमेशा तर्क संगत रहा है।
इस वक्त पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है, एनर्जी के क्राइसिस, यूक्रेन वायर का क्राइसिस, चीन और अमेरिका की टेंशन, रूस और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की टेंशन। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस क्राइसिस में अमेरिका की ये हमेशा पॉलिसी रही है कि दूसरे ममालिक को आपस में लड़ा के और उनके दरमियान में असला बेचता रहे। आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने $3 बिलियन का मजीद असला यूक्रेन को दिया है। तो नेटो का सबसे बड़ा मुल्क जो अमरीका है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन की वार खत्म हो। यूरोप का ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देख लें कि इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन है उनके यहाँ इकोनॉमी का जो क्राइसिस आया हुआ है, इन्फ्लेशन का जो क्राइसिस है, और जो बर्तानिया में यहाँ तमाम ट्रेड यूनियन जो है, डॉक्टर, बैरिस्टर, रेलवे, अंडरग्राउंड तमाम हड़ताल पे हैं। तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त बर्तानिया में, और बर्तानिया में तो हुकूमत नहीं, आप भी जानते हैं। ईरान हमेशा मंतकी मुआहदा की तरफ कोशिश करता रहा है। जब अमेरिका ने यकतरफा तौर पे ये मुआहदा खत्म किया था तो भी ईरान ने उनको वक्त दिया था, यूरोपियन यूनियन को भी वक्त दिया था, और उसने कहा था कि अगर अमरीका यकतरफा खत्म कर रहा है तो हम खत्म नहीं करना चाहते, बाकी जो 6 ममालिक है वो हमारे साथ तामन करें। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने ऐसी सेंक्शन लगाई और ऐसी सख्त कवानीन बनाए कि यूरोपियन यूनियन और बाकी ममालिक को भी ईरान से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पे फोर्स किया गया। उसको अमली तौर पे जोर तरीके से अमेरिका ने उनको फोर्स किया कि ला बना दिए।
जहां एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी नाकामियों की वजह से पुरानी पैठ गंवा रहा है, वहीं ईरान के दृष्टिकोण और नीतियों को व्यापक रूप से समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर किंदील अब्बास का मानना है कि ईरान मजबूत राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में है, यही वजह है कि वह इलाके के देशों में काफी पैठ बना चुका है। इस तरह की पोजीशन राजनीतिक और आर्थिक मजबूती के बगैर नहीं हासिल की जा सकती। वहीं इलाके के मुल्कों में अमेरिका को पैर जमाने के लिए ना को चने चबाने पड़ रहे हैं।
3 दहाइयों के अंदर ईरान ने जो बैरूनी पाबंदियों के असरात हो सकते थे उन पर काबू पा लिया और अपनी जो बुनियादी जरूरियात थी कम अज कम उसमें दुनिया को भी पता कि आप ईरान आके देखेंगे तो अंदाजा होगा कि ईरान इस खित्ते की एक पावर बन चुका है। अमेरिका तो यह चाह रहा था कि ईरान को आइसोलेट कर दे, लेकिन उसके बरअक्स हुआ है कि ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट के तकरीबन तमाम ममालिक में मौजूद है। ईरान की प्रेजेंस सीरिया में देख सकते हैं, लबनान में, फिलिस्तीन में, यमन में, बहरीन में, हर जगह पे देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका को यहाँ पे अभी कोई जाए पनाह नहीं मिल रही। तो ये देखिए, ये पॉलिटिकल जो ईरान का इमेज बना है वो बगैर ईरान की जो इक्तसादी इस्तेहकाम है उसके नहीं बन सकता था।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने शुरू से ही सैद्धांतिक नीति अपनाई और अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया कि वह हरगिज दबाव में आने वाला नहीं है। वरिष्ठ टीकाकार और ईरान की परमाणु वार्ताकार टीम के सलाहकार मोहम्मद मरंदी का कहना है कि ओबामा ने भी परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सिस्टमेटिक तरीके से ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
Dr. Zarif in Vienna in 2015 during the whole period of the negotiations, the 3 weeks, and I was with the current team in Vienna during the whole period when they were negotiating. And it is very obvious to me that while both teams did their best, but for whatever reason,
یہ بھی طے ہے کہ ایران نے پشچم پر کبھی بھروسہ نہیں کیا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ارتھ ویوستھا کو ہرگز پشچمی دیشوں پر نربھر نہیں ہونے دے گا. یہی وجہ ہے کہ ایران کی ارتھ ویوستھا امریکی پابندیوں کے باوجود اپنا سفر طے کر رہی ہے. ایران نے ثابت کیا ہے کہ اگر لکش صحیح ہے اور اس کے لیے صحیح نیتیاں اپنائی گئی ہیں تو بڑی طاقتوں کے ویروت سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. شوتاؤ کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
دوستو آپ ہمارے پرسارن کو شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ابھی آپ کارکرم وش درپن ہمارے ساتھی احمد عباس سے سن رہے تھے اور اب ہمارا انتیم کارکرم آپ سنیں گے صحت کا راز.
صحت کا راز.
دوستو کارکرم صحت کا راز کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے.
دوستوں کارکرم میں آج ہم جس پھل سے آپ کو اوگت کروانے جا رہے ہیں اس کو فارسی میں خرمالو کہتے ہیں. اس کا ویگیانک نام ہے کاکی ڈائیوس پائرس. اس کو انگریزی میں پرسیمون کے نام سے جانتے ہیں. ہندی میں اس کو تیندو پھل یا خرما بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ خرمالو پھل کا مول استھل چین ہے.
حالانکہ یہ چین سے وشیش نہیں ہے بلکہ جاپان، پرتگال، اسپین، فرانس، برازیل، لبنان، الجیریا اور ایران سہیت وشو کے کئی دیشوں میں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں خرمالو کی لگ بھگ 3,000 قسمیں پائی جاتی ہیں. یہ ایسا پھل ہے جس کے بارے میں لوگ بہت کم ہی جانتے ہیں. یہ پتجھڑ کا پھل ہے جو اس موسم کے انت تتھا جاڑے کے آرمبک دنوں میں ہوتا ہے. اپنے وشیش سواد کے کارن خرمالو کے پسند کرنے والوں کی سنکھیا بہت ہے.
پوری دنیا میں خرمالو کی سب سے ادھک پیداوار چین، جاپان اور دکشنی کوریا میں ہوتی ہے. اسپین ایسا دیش ہے جو خرمالو کا سب سے ادھک نریات کرتا ہے. اتری ایران اور فارس پرانت کے کچھ شہروں میں بھی خرمالو پیدا ہوتا ہے. ان شیتروں میں پیدا ہونے والا یہ پھل بہت ہی سوادشت ہوتا ہے. ایران سے بھی اس پھل کا نریات کئی دیشوں کو کیا جاتا ہے. خرمالو پھل کا پیڑ کافی سندر ہوتا ہے. اس کی پتیاں چوڑی ہوتی ہیں.
خرمالو یا تیندو پھل دیکھنے میں تو بہت کم ملتا ہے کنتو یہ پوشک تتووں سے بھرپور ہوتا ہے. کھانے میں بہت ہی رسیلا اور سوادشت ہوتا ہے. اس کو سکھا کر بھی کھاتے ہیں. ایسے میں اس کا سواد کھجور کی طرح لگتا ہے. اس کا پھل ٹماٹر سے ملتا جلتا ہوتا ہے کنتو سائز میں کچھ بڑا ہوتا ہے. خرمالو گودے والا ایسا پھل ہے جس کے بھیتر بیج نہیں پایا جاتا. یہ شریر کو شکتی پردان کرتا ہے.
اگر آپ اس پھل کے 4 ٹکڑے کریں تو دیکھیں گے کہ ہر ٹکڑے یا سلائس پر جیلی جیسا پدارتھ لگا ہوا ہے. یہی پدارتھ اس کی سرکشا کرتا ہے. खुरमालू का कच्चा फल भी उसी प्रकार से लाभदायक होता है जैसा कि इसका पक्का फल, किंतु कच्चे फल का स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है। ये कच्चा और पक्का फल गुण और विशेषताओं के हिसाब से समान है। ये फल इंसान को सर्दी और फ्लू से बचाए रखता है।
खुरमालू के लगातार प्रयोग से सर्दी, जुकाम, सूजन, संक्रमण और इसी प्रकार की बहुत सी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर के भीतर प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। उच्च रक्तचाप को भी खुरमालू नियंत्रित रखता है। दिल की बीमारियों को नियंत्रित करने में भी ये फल अच्छा माना गया है। कैंसर के फैलाव को रोकने में भी खुरमालू विशेष भूमिका निभाता है।
इसके भीतर पाई जाने वाली शर्करा शुगर के रोगियों के लिए हानिकारक नहीं होती, बल्कि वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। खुरमालू ऐसा फल है जो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B6 के साथ ही फाइबर, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस से समृद्ध होता है। खुरमालू में कुछ मात्रा में विटामिन के भी पाया जाता है। ये फल रक्त के थक्के नहीं बनने देता। वे लोग जिनको नाक से खून आता है, उनके खून के रोकने में खुरमालू की भूमिका होती है।
खुरमालू के भीतर कई प्रकार के विटामिन होने के बावजूद इसमें बहुत से खनिज पदार्थ भी होते हैं। इस फल के ऊपरी हिस्से पर कभी कभी कुछ लगा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि जब कभी खुरमालू को खाना हो तो उसे अच्छी तरह से धो लिया जाए और इसको हमेशा ही इसके छिलके के साथ खाना चाहिए, ताकि इसके फायदों से अधिक लाभान्वित हुआ जा सके। ये मैदे को मजबूत बनाता है, सीने में जमे हुए कफ को निकालता है और त्वचा पर निकलने वाले कील मुहासों को समाप्त करने में मदद करता है।
खाना खाने से कुछ समय पहले अगर खुरमालू को खा लिया जाए तो ये भूख को बढ़ाता है। इसीलिए इसको खाने के बाद जब मनुष्य भोजन करता है तो वो अपने खाने को बहुत ही चाव से खाने लगता है। विशेष बात यह है कि भोजन को चाव से खाने वाला व्यक्ति अपना खाना तो वो चाव से खाता है, लेकिन अधिक खाना वो नहीं खा पाता, क्योंकि खुरमालू उसे ऐसा करने से रोक देता है। खुरमालू की एक अन्य विशेषता यह है कि अगर इसको खाना खाने के बाद खाया जाए तो भोजन को हजम करने में ये मददगार साबित होता है।
इस फल की एक खूबी ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के भीतर ऑक्सीजन मुक्त रेडिकल्स को समाप्त करता है। ये फल इसी प्रकार से शरीर के भीतर विषाक्त पदार्थों को निकाल बाहर करता है और सेल्स को होने वाली क्षति को भी रोकता है। इस प्रकार से ये शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने और जिगर को स्वस्थ बनाता है। फैटी लीवर के उपचार में भी खुरमालू की विशेष भूमिका होती है। विटामिन सी से समृद्ध होने के कारण खुरमालू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
दोस्तों, विटामिन सी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। रक्त में पाए जाने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं माइक्रोबियल, वायरल, फंगल और टॉक्सिन संक्रमणों के विरुद्ध शरीर की रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार से शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में खुरमालू की भूमिका उल्लेखनीय है। ये फल नसों अर्थात नर्व सिस्टम को मजबूत करता है। खुरमालू जवानी को बनाए रखने में सहायक होता है और शरीर तथा पेट के विषाक्त पदार्थों को प्रभावहीन बना देता है।
प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और शर्करा के कारण खुरमालू का जूस ऊर्जा को बढ़ाने वाला एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक ड्रिंक है। इसके एक गिलास का सेवन हमें अपने दैनिक कामों के करने में अधिक ऊर्जावान रखता है। थकन और स्ट्रेस को दूर रखने के लिए खुरमालू का जूस एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि खुरमालू की बहुत सी प्रजातियां होती हैं जो सामान्यतः गर्म क्षेत्रों में अधिक देखी जाती हैं, जैसे भारत और मलेशिया के विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त इसका एक औषधीय रूप ईरान, चीन, भारत और कुछ दक्षिणी यूरोपीय देशों में देखा जाता है, जो अधिकतर औषधि में ही प्रयोग होता है। इसको लैटिन में लोटस डियोस्पिरस कहते हैं। इस औषधि का पौधा 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं, जो चौड़े और नुकीले होते हैं। इस औषधि का फल अंडे के आकार का छोटा सा होता है।
ये फल गहरे बैंगनी रंग का होता है। जो विशेषताएं खुरमालू में होती हैं, वही विशेषताएं इसके औषधि में भी पाई जाती हैं। चीन में इसको शांति प्रदान करने वाले जूस के रूप में प्रयोग किया जाता है। खुरमालू की विशेषता वाली इस औषधि के पत्तों में बुखार दूर करने की विशेषता पाई जाती है। इसके पाउडर का प्रयोग मैदे में होने वाली खूनरेजी को रोकता है। इससे मसूड़ों की सफाई भी की जाती है। ये मसूड़ों को मजबूत भी करता है। कुल मिलाकर यह औषधि दांतों की सफाई और मसूड़ों की मजबूती में बहुत अधिक भूमिका निभाती है।
दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि तेंदुफल या खुरमालू की कई प्रजातियां होती हैं, जिनकी उपचारिक विशेषताएं बहुत अधिक है। खुरमालू की प्रजातियों में से एक प्रजाति झाड़ी के रूप में पैदा होती है। ये अधिकतर भारत और श्रीलंका के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके फल, फूल, छाल, शाखा और बीज सबका प्रयोग किया जाता है। इसके बीज के तेल को भी हम प्रयोग करते हैं। इसका पौधा देखने में सुंदर होता है। इसकी छाल काफी मोटी होती है।
खुरमालू में वसा और प्रोटीन बहुत कम होती है। ये विटामिन और फलों से समृद्ध फल है। इसके भीतर कैल्शियम, आहार फाइबर, मैंगनीज और फास्फोरस पाए जाते हैं। ये मूत्रवर्धक होता है और कब्ज की समस्या में भी लाभकारी है। खुरमालू में भरपूर कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। किडनी के मरीजों के लिए उचित होगा कि वे प्रतिदिन इस फल का प्रयोग करते रहें। पेशाब की जलन को समाप्त करने में भी ये उपयोगी होता है। त्वचा संबंधी बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए इस फल के गूदे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामिक गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, अब हमारी सभा का समय यहीं समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।